राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन आनंद भ्राता जी, आपके आगमन से हम हैं शुक्रगुजार। आपके आगमन से हम हैं शुक्रगुजार। तहे दिल से करते स्वागत आपका, जोरदार जोरदार करते हैं जोरदार। खुशियों के पुष्पों से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप अनुभवी सीनियर मोस्ट वरिष्ठ भ्राता जी हैं इस संस्था के। इस अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मा कुमारी संस्था के आप सेक्रेटरी जनरल हैं और दिल्ली सेवा जोन के आप उत्तरदायी हैं। प्यूरिटी मास पत्रिका के आप एडिटर हैं। 8 भाषाओं में प्रकाशित होने वाले राजयोग करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लेखक भी हैं। देश विदेश में इस संस्था के प्रतिनिधि के रूप में आपने बहुत सेवाएं दी हैं। आप अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने अमूल्य वक्तव्य दिए हैं। हम रोज शाम 6:30 बजे पीएम टीवी चैनल में मुरली मंथन से आपसे मुलाकात होती है। ब्राह्मणों की मम्मा बाबा की पालना में पले हुए, दादियों के संघ में रहे हुए, अपार अनुभव के खजाने आपके अंदर भरा हुआ है। ऐसे भाई जी से हम विनती करते हैं, जैसे बांसुरी जैसे बांसुरी जगत में गुंजन कर जाती हैं, मधुर तान पर मन मयूर नाच उठती हैं, आपकी मीठी रमणीक वाणी से तन मन पावन बन जाती हैं, अनुभव के अमृत से दिल की मटकी भर जाती हैं। तो भ्राता जी से विनती है, आज हम सबका मन मयूर को नचा दे, दिल की मटकी को अपने अनुभव के अमृत से भर दे। माइंड डांस, जब मन नाचता है तो तन भी उसके साथ जरूर नाचेगा। तन मन को नचाने वाले आदरणीय भ्राता जी का हम पुनः स्वागत करते हैं, आपसे सुनेंगे।
ओम शांति। बहन जी ने बोला कि आप सीनियर मोस्ट भ्राता हैं, तो आप सब जानते हैं क्या कि मैं सीनियर मोस्ट भ्राता नहीं। आजकल एक कारण मन के नाच को रोकने का है कि जो होता है उसको हम भूल जाते हैं और जो नहीं होता है उसको हम मान लेते हैं। अब सोचने की बात है कि हमारा मन यानी आत्मा का मन ऐसा कौन सा काल है, समय है सृष्टि चक्र में जब नाचता ही रहता है, उसको नचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, निरंतर लगातार ही नाचता रहता है, वो कौन सा समय है, कौन सा युग है भाई? अच्छा, बहन जी हम भी मानती हैं कि वो ऐसा युग है जहां मन ऑटोमेटिकली नाचता रहता है। और बाबा ने सब मुरलियों में कहा है कि एक चीज होती है असली और एक होती है नकली। तो आजकल भी नाच होते हैं, लेकिन क्या वो असली नाच है या नकली, क्योंकि उस डांस के लिए पहले तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, तब कोई व्यक्ति अच्छा डांसर बनता है जिसकी लोग ताली बजाएं, और फिर उसको समय दिया जाता है कि इतने समय से इतने समय तक तुमने डांस करना है, अगर बंद नहीं किया तो म्यूजिक बंद कर देंगे। अनाउंसर आके कहेगा अब पूरा कीजिए, और वो नृत्य जो है वो संगीत का बटन दबाने से शुरू होता है और संगीत का बटन बंद करने से पूरा हो जाता। तो कई ऐसे शरीर हैं, ऐसी आयु के आत्माएं हैं जो डांसर बन ही नहीं सकते, जो खड़े भी नहीं हो सकते, डांस क्या करेंगे। तो नकली हुआ या असली हुआ, और फिर यदि नृत्य खुशी की चीज है तो कितनी देर की खुशी इस नकली डांस से हो सकती है। अच्छा, नृत्य बहुत अच्छा है, डांसर बहुत प्रसिद्ध है, उसके पोस्टर सारे नगर में लगे हुए हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के दिल में मन में कुछ उदासी है, कुछ मजबूरी है, कुछ मतभेद है, कुछ मगरूरी है, वो डांस देखने नहीं जाएगा। और अगर किसी को बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हुई है, कुछ उसके किसी की मृत्यु हो गई है, या उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, या उसके पास करोड़ों रुपए के पुराने नोट हैं, उसके आगे आप डांस करो, म्यूजिक बजाओ तो मुस्कुराएगा भी नहीं, क्योंकि चिंताग्रस्त है। इसलिए मन के डांस के लिए जो सदा होता रहे, और ना उसके लिए एक म्यूजिक बजाना पड़े, ना उसके लिए कोई स्टेज चाहिए, ना उसके लिए मोटे पतले शरीर का फर्क हो, किसी भी एज का हो, उसको सीखना भी नहीं पड़ता, तो वैसा डांस जो होगा वो तब होगा अगर चिंता ना हो, भय ना हो, टेंशन ना हो, तब वो नाच नेचुरल हो सकता है। आप देखेंगे कई व्यक्ति माला फेरते हैं, तो माला फेरते हैं, फेर रहे हैं, उनको कहा जाता है कि निरंतर जाप करने से, लगातार माला फेरने से ही पुण्य होता है, अगर बीच में माला फेरना रुक गया तो दोबारा फेरनी पड़ेगी। तो होता क्या है, वो फेरना शुरू करते हैं, बीच में कोई ख्याल आ गया, माला रुक गई। तो इसी प्रकार से डांस भी निरंतर रहने के लिए क्या होना चाहिए, उसको कहा जाता है नेचुरल। जो चीज नेचुरल है और इजी है, आसान है, वो सदा हो सकती है। अगर कोई चीज नेचुरल नहीं है तो सदा नहीं हो सकती, और अगर डिफिकल्ट है, मुश्किल है, तो भी सदा नहीं हो सकती। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस आता है जाता है, आता है जाता है, तो आप नेचुरल लेते रहते हैं, नहीं तो रात को आप सो जाएं और सांस निकल जाए, वापस ही ना आए, फिर क्या होगा। इसलिए स्वचलित ऑटोमेटिक स्वतः जो चीज होती रहे उसी को निरंतर कहा जाता है। अब मन का डांस निरंतर वाला असली है या दूसरा वाला? अगर जैसे हार्ट है आपका, तो एक बार हार्ट चलना शुरू हो जाता है और शरीर छोड़ने तक चलता ही रहता है ऑटोमेटिकली। अगर किसी का हार्ट चलना बंद हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, तो उसका प्राण ही खत्म। अब बाबा कहते हैं कि इस समय हमको मन का डांस करने की आवश्यकता है। मन का डांस एक बारी शुरू हो जाए और होता ही रहे, होता ही रहे, होता ही रहे, ऐसे नहीं कि शरीर को रोग आ गया, मन का डांस रुक गया, कोई समस्या आ गई, मन का डांस रुक गया, किसी को भोजन लेट मिला, मन का डांस रुक गया, कोई भोजन करने गया तो खीर खत्म थी तो भी उसके मन का डांस रुक गया कि खीर मेरे लिए क्यों नहीं रखी, आदि आदि। तो बाबा कहते हैं मैंने बच्चों को जब जन्म दिया, जैसे शारीरिक जन्म लेते ही दिल धड़कना शुरू हो जाता है और अंत तक धड़कता रहता है, उसी प्रकार से बाबा ने जब हमें मर जीवा जन्म दिया, मृत नया जन्म दिया, ब्राह्मण जन्म दिया, आप सबको याद है ना, आपको कभी ना कभी तो ब्राह्मण जन्म मिला है। आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है? कई ब्राह्मण अपना अलौकिक जन्मदिन भी मनाते हैं। तो जब हमको ब्राह्मण जन्म मिला, उसी समय बाबा ने हमको दो बर्थडे गिफ्ट दे दिए। आम तौर पे छोटे जन्मते ही बच्चे को गिफ्ट नहीं मिलता। फर्स्ट एनिवर्सरी, फर्स्ट बर्थडे पर मिलता है, ऐसे मिलता रहता है, कब्र में पांव हो तब भी मिलता रहता है, आज तेरा बर्थडे है, कितना 80वां, और 80 मोमबत्तियां जलाते हैं फिर बुझाते हैं, 80 तो गए, अगले की फिक्र कर। लेकिन जो जन्म लेते ही माता पिता देते हैं, शिव बाबा, बाप दादा या माता पिता, वो गिफ्ट क्या है? अगर हम उस गिफ्ट को जान जाएं जो हम भूल गए हैं और उसको पकड़े रखें, तो आपका मन निरंतर डांस करता ही रहेगा। और वो बर्थडे गिफ्ट जो हैं, वो दो हैं, एक नहीं है। एक माता की तरफ से समझ लो, एक पिता की तरफ से समझ लो। और वो गिफ्ट आपको याद होंगे और जगह जगह हम उसके स्लोगन भी लगाते हैं। वो कौन से गिफ्ट हैं? पवित्र बनो और दूसरा योगी बनो। अच्छा, अब ये हमारे दो बर्थडे गिफ्ट हैं ब्राह्मण के, पवित्र बनो और योगी बनो। अभी हमने गीत सुना, गीत भी क्या कह रहा है कि मन खुशियों में तब नाचता है जब तुझे याद करते हैं और जब तेरी शहनाई सुनते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें उसमें हैं। तो ब्राह्मण जीवन के श्वास या प्राण समझो क्या हुए? पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की जन्म घुटी क्या हुई? पवित्रता। अच्छा, ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहते हैं, सबसे ऊंचा, देवताओं से भी ऊंचा, और महान जीवन कहते हैं। देवताओं को कभी महात्मा नहीं कहा जाता। सच्चे महात्मा कौन है? ब्राह्मण है, महान आत्मा। तो वो भी किस कारण से कहा जाता है? ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता और महानता किस आधार पर है? पवित्रता। अब बाबा कहते हैं के ब्राह्मण जीवन का जो सबसे बड़ा संस्कार है, जिस पर बाकी सब कुछ आधारित है, वो भी है पवित्रता। इसलिए अगर ब्राह्मण जीवन में हमारा मन सदा नाचता रहे तो उसका आधार क्या है? पवित्रता। जो ही पवित्रता में डिस्टर्बेंस आई तो डांस बंद हुआ। अब आप देखिए, एक होता है डांस का बंद होना और एक होता उल्टा डांस करना। जब किसी व्यक्ति को डांस करने का अभ्यास हो लेकिन उसकी जो सुर है, उसकी जो ताल है, उसका जो म्यूजिक है, उसका जो स्टेज है, वो ना मिले, तो डांस करने की तो आदत है, वो क्या करेगा? वो उल्टा डांस करना शुरू कर देगा, जिसका नाम है तांडव नृत्य। हमें देखना है कि अभी हम तांडव नृत्य करते हैं या भारत नाट्यम करते हैं। अब तांडव नृत्य में क्या होता है? बड़ा भयानक होता है, लोग उससे डरते हैं, विनाश के लिए होता है वो। तो अब हमने देखना है कि आजकल हमारा मन दोनों नृत्यों के बीच में कहां पर है, क्योंकि दुनिया वाले भटक रहे हैं। तो जो भटकना होता है उसका अर्थ क्या है? वो भी एक डांस कर रहे हैं, लेकिन भटकने का डांस कर रहे हैं। वो भी चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, वहीं वहीं घूमते रहते हैं, ना सुर ना ताल, दूसरे से भी उनकी ताल नहीं मिलती है, ना रास नहीं मिलती। अब बाबा कहते हैं, ऐसा क्या कारण हुआ कि मैंने आपको सब ठीक ठाक करके संस्कारी नृत्य करने के भर दिए कि आप देखेंगे कि जैसे देवता जो होते हैं, अगर एग्जाम्पल लें तो आज का छोटे बच्चे को महात्मा कहते हैं। दुनिया के लोग भी नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन छोटा बच्चा कैसे करता? अगर आप छोटे बच्चे को कहें कि जाओ घर का सामने का गेट है, उसको खोल के आओ, तो बच्चा नॉर्मल नहीं जाता, वो डांस करता हुआ, पीछे देखता हुआ, आगे देखता हुआ, बड़े स्टाइल से गेट पर चढ़ेगा, फिर उसका ढक्कन खोलेगा, फिर आपको देखेगा, फिर मुस्कुराएगा। यानी हर वक्त उसके अंदर नेचुरल खुशी का डांस होता रहता। अच्छा, इसी प्रकार से देवी देवताओं का क्योंकि मन डांस करता है, करता ही रहता है, तो उनका हर कर्तव्य, हर कर्म, हर बोल क्या हो जाता है? कला हो जाता है। तो जैसे कोई एक्टर कलाकार होता है, डांस करने वाला एक कलाकार होता है, तो जब वो स्टेज पर आता है तो नॉर्मल तरीके से नहीं आता, उसके आने में भी स्टाइल होता है। डांस शुरू करने से पहले कहीं धरती पर माथा लगाते हैं, कहीं हाथ जोड़ते हैं, उसमें भी स्टाइल होता है। अर्थात उसका हर चीज डांस ही डांस होता है। अब बाबा कहते हैं कि देवताओं का, क्योंकि वो चिंता मुक्त हैं, वो भय मुक्त हैं, वो तनाव मुक्त हैं, उनको कोई अपनी रक्षा का, सुरक्षा का कोई भय नहीं है, हर चीज उनकी निश्चित है, तो इसलिए वो निश्चिंत हैं। तो हर एक्टिविटी उनकी डांस ही है। अच्छा, बाबा कहते हैं हम भी वही से कर रहे थे, फिर क्या हुआ? तो अगर आप ड्रामा के चक्कर को सामने लाएंगे तो आप देखेंगे कि बीच में हमें, जिसको कहते हैं ना बैड कंपनी, हमारा संग किसी ऐसे से हो गया जो खराब था। उसने क्या किया? हमें पहले लूट लिया। अब जब कोई किसी को लूटता है तो पराया करके क्या करता है? वो उसकी चाय में कुछ ऐसी दवाई मिला देता है, फिर उसको चाय पिला देता जिसमें नशा होता, या किसी भी तरीके से उसको बेसुध करके उसको उसके सेंसेस को सेंसिबल को सेंसलेस बना के, अर्थात उसको बेहोश करके उसको लूट लेता है, और उसको विस्मृति हो जाती है कि मैं असल में कौन हूं, अकेला भी कर देता है उसको। तो इसलिए हमें रास्ते में चलते चलते डांस अच्छा भला करते करते रावण मिल गया। अब बाबा ने तो हमें, हमारे पिता ने तो हमें दो जिसको कहते हैं वरदान दिए जन्मते ही, कि पवित्र भव और राजयोगी भव, सहज राजयोगी भव। लेकिन उसने हमें शराब दे दिया कि तू पवित्र योगी तो छोड़, तू सदा ही अशांत रह। अच्छा, तो क्या किया, हमको आगा पीछा भुला दिया कि हम प्योर एस्ट आत्मा है, पवित्रों में भी पवित्र आत्मा है, सद्युग में आने वाली आत्मा है ही पवित्र देव आत्मा। फिर हमारा जो घर है परम धाम, वो भी 100% पवित्र स्थान है, वहां कोई अपवित्र एंटर ही नहीं कर सकता, अनादि। हम अनादि ही डांसर है, प्योर मैंने डांस करना, लेकिन वहां नहीं कर सकते, स्टेज के पीछे है। फिर सतयुग में आए तो सतयुग में उतरते ही हमारा सारा जिसको कहते हैं आदि रूप, वो भी अति पवित्र है, देवी देवता। अच्छा, हम पवित्र, हमारा घर पवित्र, हमारा स्टेज पवित्र, और हमारा पिता परम पिता तो पवित्र बनाने वाला है। और कितना जन्म, आप सोचिए कि दो युग पूरे हम डांस ही करते रहे हैं, और बाकी आत्माओं को बाबा ने ऊपर रखा हुआ है कि तुमने नीचे नहीं उतरना, क्योंकि डांस डिस्टर्ब नहीं करना, तो ये परफेक्ट डांस करते हैं। फिर जब हम विस्मृति में आ गए, इतना सारा लंबा चौड़ा इतिहास भी भूल गए, तो तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया, भटकने का डांस करना शुरू कर दिया, दुखी हो गए, माता पिता से डिस्कनेक्ट हो गए। तो इसलिए फिर बाबा आके क्या करते हैं, हमको स्मृति दिलाते हैं। सार ये हुआ कि अगर हमने माइंड डांस करना है तो स्मृति में रहें, विस्मृति हुई माइंड डांस रुका। किस स्मृति में रहना है, अनेक स्मृतियां हैं कि हम हैं ही डांसर कुल के, हमारा जो खानदान है, हमारा जो परिवार है, वो है ही डांस करने वालों का, मन का डांस उनका हर वक्त होता रहता है, क्योंकि इतनी खुशी है, खुशी में ही नाचता है व्यक्ति, इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि बेहद की खुशी है, बेहद वाला कभी भी रुकता नहीं है, उसको किसी चीज का चिंता ही नहीं। अब यहाँ भोजन खिलाने वाले हैं, कितना खुशी से भोजन खिलाते हैं, क्योंकि भोजन बेहद है। खाने वाले को हम बार बार कहते हैं और लो और लो, वो कहते हैं ऐसा तो हमने अपने घर में भी नहीं देखा, और लो और नहीं नहीं थोड़ा सा तो और लो, तो ये क्या हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ, एक तो हम बेहद के हैं, दूसरा हमारी जो वृत्ति है वो देने की है। जो देने की वृत्ति वाला होता है, क्योंकि डांस का डांसर का डांस खुशी देता है, लेकिन आजकल पैसे लेके डांस करते हैं, उनका बड़ा कंपटीशन होता है कि मेरा अच्छा हो या तेरा अच्छा हो, तो इसलिए वो डांस असली नहीं है। परंतु बेहद की खुशी हो और पवित्रता हर चीज में रहे। अब देखिए ब्राह्मणों के, हमारे बुद्धि का भोजन क्या है, ब्राह्मण क्या खाते हैं, बुद्धि जो हमारी डांस करने के मूड में रहे, सदा क्लियर रहे। अगर डांसर की स्टेज में बत्ती बुझ जाए और स्टेज से नीचे गिर जाएगा, तो लाइट हमेशा डांसरों के लिए लाइट बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और तरह तरह की लाइट होती है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण की बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प। अच्छा, दुनिया भी देखती है और ब्राह्मण भी देखते हैं, तो ब्राह्मणों की आंखों के द्वारा क्या दिखाई देता है? ब्राह्मणों की पवित्र दृष्टि ही उनकी आंखों की रोशनी है। तो जिस दृष्टि भी पवित्र है, बुद्धि भी पवित्र है। अच्छा, ब्राह्मणों के कर्म क्या होते हैं? तो आप देखिए हमारे कर्म कैसे होते हैं। ब्राह्मण का ऑक्यूपेशन ही है श्रेष्ठ कर्म, सुख देने वाले कर्म, और जिसको कहते हैं कि मर्सी के, अगर कोई खराब व्यक्ति भी है उसके ऊपर भी तरस करना, तो हमारा ऑक्यूपेशन भी अच्छा है। और बाबा कहता आपका संबंध संपर्क जो भी है वो सब ब्राह्मण मर्यादा के अनुसार है, नेचुरल है। दुनिया में देवताओं में भी मर्यादाएं होती हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन सबसे ऊंची मर्यादाएं किसकी गाई गई हैं? ब्राह्मणों की। अच्छा, तो जब हमारा सब कुछ ही पवित्र है तो इसका मतलब क्या हुआ? पवित्रता की भी परसेंटेज होती है, बैलेंस। अगर हमने सब्जी तुलवानी हो तो तराजू कैसा होता है? थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए। अगर आपने सोना तोलना हो तो तराजू कैसा होता? बड़ा जबरदस्त कैलिब्रेटेड होता है, जरा भी इधर उधर नहीं, क्योंकि जरा सा इधर उधर हुआ तो जैसे कोई रॉकेट होता है, उसको भेजो आप बृहस्पति के ग्रह पर और वो चला जाए शनि के ग्रह पर, जरा सा फर्क पड़ना। अच्छा, ये तो हुआ सोने का तराजू, और हीरे का तराजू कैसा होना चाहिए? हीरे का आप सोचिए कि हीरा तोलने का तराजू कितना अति कैलिब्रेटेड होना चाहिए, जरा भी गड़बड़ हुई तो बहुत लॉस है। तो ब्राह्मणों की तुलना, हमारे जीवन की तुलना और देवताओं की तुलना किससे की गई है? वो गोल्डन एज है या डायमंड एज है? ये डायमंड लाइफ ही गोल्डन लाइफ बनाती है। इसलिए अब हम इस बात पे आते हैं कि आखिरकार हमारी फाइनल स्टेज जो देवता की है वो कौन से डांस से बनी है। तो आप देखेंगे ये देवताएं हीरे तुल्य जीवन की जब पूरा होता है तो वो देवता बनते हैं। देवता की आंख, देवता की आंख उतना ही देखती है और वही देखती है जितना और जो उसको देखना होता है, ना कम ना ज्यादा। और देवताओं के कदम उतना ही चलते हैं जितना उनको चलना है, न कम न ज्यादा। देवताओं के कान उतना ही सुनते हैं और वही सुनते हैं जो उनको सुनना है, न कम न ज्यादा। देवताएं भी निंद्रा करते हैं, सोते हैं, लेकिन उतना ही सोते हैं जितना आवश्यक है, न कम न ज्यादा। ना उनको नींद आने में कष्ट होता है, ना उनकी आंख खुलने में कष्ट होता है, क्योंकि बैलेंस्ड है। अब आप देखिए कि ब्राह्मण उससे भी उत्तम है, क्योंकि देवताएं परफेक्ट दुनिया में रहते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, और ब्राह्मण तो इम्परफेक्ट दुनिया में रहते हैं, इतना डिस्टर्बेंस होते हुए भी वो बैलेंस में रहते हैं, तो फिर उनकी आंखों का क्या कमाल होगा। तो ब्राह्मण जो है आंखों से इम्पोर्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट करते हैं, अर्थात आपकी आंख अंदर भी ले जा सकती है, बाहर भी ला सकती है। तो ब्राह्मण, असली ब्राह्मण का ओरिजिनल ऑक्यूपेशन क्या है? कि बाबा का परिचय देना बिना बोले, इसलिए हमारी दृष्टि प्रसिद्ध है। आप दादी जानकी जी से या दादी गुलजार जी से क्या मांगते हैं? हमें ज्ञान सुनाओ, सिर्फ दादी दृष्टि दे दो। दृष्टि के द्वारा ही ब्राह्मण अपना सारा जो उसकी प्राप्ति है, उसकी धारणा वो पास ऑन कर सकता है। एक प्योर शांत स्वरूप खुश आत्मा जिसका मन डांस कर रहा है, वो आपको दृष्टि द्वारा आपके मन को भी नचा सकता। अब बाबा तो कहता है कि मेरी बीन से तो सांप नाचते हैं। सारे शास्त्र भरे पड़े हैं कि देवताओं ने सांप देवताओं की सेवा करते थे। विष्णु जी उसकी सैया पर लेटे हुए हैं, कृष्ण जी जमुना पार कर रहे हैं तो सांप छतरी बना के बैठा है। मतलब क्या हुआ कि जब इतनी बिल्कुल पॉइजन जहर जैसी चीज को आप बस में कर लें, तब आप डांस कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जब हम परफेक्ट बिहेव करते हैं तो प्रकृति भी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। वहां प्रकृति हमारी सेवाधारी रहती है, किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करती। इसलिए अगर हमें निरंतर मन का डांस करना है तो पहली बात यह है कि हम सदा खुश रहें। अगर दुनिया में और जितने भी खजाने हैं, ज्ञान का खजाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, शक्तियों का खजाना बहुत इम्पोर्टेंट है, गुणों का खजाना बहुत इम्पोर्टेंट है, समय का खजाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और संकल्प का खजाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन सब खजानों से ये सारे खजाने किस खजाने को प्राप्त कराते हैं? चाहे ज्ञान का खजाना है, चाहे गुणों का खजाना है, चाहे शक्तियों का है, समय का है, कुछ भी है, ये हमको खुशी का खजाना प्राप्त कराते हैं। आपके पास ज्ञान बहुत है पर आप खुशी नहीं है। आप कहते हैं मेरे अंदर बहुत दिव्य शक्तियां हैं पर खुश नहीं है। तो अगर खुशी का खजाना है तो सब खजानों का माई बाप है और खुश व्यक्ति ही डांस कर सकता। इसलिए ऐसा कोई फॉर्मूला हो कि हम सदा खुश रहें तो आपको किसी को ज्ञान सुनाने की भी जरूरत नहीं। नेचुरली आपको देखकर वो सोचेगा इसको कुछ प्राप्ति है, कैसे हुई। इसलिए बाबा कहता है खुश रहो और खुशी बांटो। खुशी बांटना मैंने दूसरे को भी आप खुश कर दें। अच्छा, कहते हैं ना मेरा दिल खुश हो गया, कोई नहीं कहता मेरी आंख खुश हो गई, मेरा कान, दिल खुश हो गया, अर्थात वो भी डांस करने लग गया। अब इस खुशी के खजाने हमें अनुभव तो है, सभी ब्राह्मणों को अलौकिक अनुभव है कभी ना कभी कि हम बहुत खुश थे। उस समय हम अति इंद्रिय सुख में थे, इंद्रियों वगैरह का कोई प्रभाव ही नहीं था। हमारी इंद्रियां भी वास्तव में ओरिजिनली सेंसेस, जिसको हम सेंस ऑर्गन कहते हैं, ये सेंसिबल थे और हर इंद्री अच्छा काम करना चाहती है। कोई भी इंद्री व्यक्ति की हाथ क्या चाहते हैं कि हम कुछ दें, देवता बने, ऐसे नहीं। पांव क्या चाहते हैं, हमें कोई सीधे रास्ते ले जाए, उल्टे रास्ते जाना नहीं चाहते, लेकिन मन गड़बड़ वाला है तो उसको उल्टी तरफ ले जाता है। हर इंद्री, आंखें क्या चाहती हैं, आंखों को सुकून कब मिलता है, जब कोई अच्छी चीज देखे। आज सब चीज का नकल है, आपके कानों में ऐसा संगीत डालेंगे कि आप समझे कि बस बहुत अच्छा है। आप प्लेन में या ट्रेन में सफर करते हैं तो आजकल हर एक के पास मोबाइल फोन है। अच्छा, वो उसमें कुछ जोड़ के कान में लगा लेता है, शायद कोई गीत भी सुनता है, तो फिर अनाउंस किया जाता है कि आप कान के द्वारा सुनिए ताकि दूसरे पैसेंजर डिस्टर्ब ना हो। उसने अपने कान में लगाया हुआ है, पड़ोसी ने अपने कान में लगाया हुआ है। हजार मील का सफर करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, सिर्फ वो सुनते रहेंगे, आंखें भी उनके कहीं और होंगी। अच्छा, बड़े खुश हैं कि मैं यहाँ से न्यूयॉर्क में बात कर सकता हूँ, देखो साइंस ने क्या तरक्की की है। न्यूयॉर्क में बात करेंगे, अपने साथ बैठे हुए पैसेंजर से कोई बात नहीं करेंगे, भाई तू कौन है क्या। आगे ये मोबाइल फोन नहीं होता था तो पूछते थे, भाई जी आप कहाँ के हैं, चला अपना अनुभव सुनाओ। तो सारा कुछ हमारा आर्टिफिशियल है, इसलिए बैलेंस। तो बैलेंस का मतलब क्या है कि हमें हर चीज इतनी ही करें, ना कम करें ना ज्यादा करें, और इजीली करें। इसलिए बाबा ने कहा इजी राज योगा, पवित्रता का आधार है सहज कनेक्शन बाबा से, शहद याद चलते फिरते याद। अब आप देखिए चलते फिरते याद और बैठकर याद करना, हठ योगा करना। कोई व्यक्ति हठ योग में बैठा है वो यहाँ नहीं होगा, वो कोशिश करेगा कि मैं ऊपर जाऊं, कोई उसको छेड़े भी तो कहेगा डिस्टर्ब मत करना, योग में बैठा हूं। अच्छा, और जो सहज राज योगा है कि हम वहां जाके लटक जाएं, वो है या आप बाबा को अपना कंपेनियन बना लें। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा कंपेनियन बनने को तैयार हूं, यहां ही मुझे अपने साथ रखो, कर्म करो। तो कर्म योगी जो होगा वो धरती पर रहेगा और ठीक राइट कर्म करेगा, उसको अपनी बुद्धि को खास ताकत भरने के लिए वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, यही वो शक्तिशाली रहेगा। तो बाबा कहता है मेरी कंपनी और मेरा कंपेनियनशिप सारी कल्प में घूमकर देख लो, आपको नहीं मिलेगा। जो हर वक्त जहां आपके लौकिक रिश्तेदार भी अलाउड नहीं है, वहां भी बाबा आपके साथ होगा। आपको ऑपरेशन कराना पड़ जाए तो आपके रिश्तेदार तो आपको अच्छा अस्पताल ले देंगे, अच्छा डॉक्टर ले देंगे। उस वक्त जब आपके यहाँ चाकू लगाया जा रहा है, कौन मदद करेगा, उस वक्त भी वो होगा। इसलिए बाबा कहता है कि अगर नेचुरल और सहज करना है, क्योंकि मुश्किल चीज कभी भी सदा नहीं हो सकती, मुश्किल चीज कभी नहीं सदा हो सकती, आर्टिफिशियल चीज भी कभी सदा नहीं हो सकती। सहज और सदा ये कनेक्टेड है। कोई बहुत ही गुस्सा करने वाला व्यक्ति हो, क्या वो 24 घंटे गुस्सा कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहता है इजी। तो प्योर बनने के लिए इजी कनेक्शन अर्थात बाबा को अपने साथ रखें। तो इसलिए बैलेंस का मतलब क्या है, हमको कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़े। जैसे आजकल कहते हैं शरीर रोगी हो जाता है, तो कहते हैं जिसमें कैल्शियम की कमी है इसको कैल्शियम दो, कोई कहता है इसमें पोटाशियम की कमी है इसको पोटाशियम दो, ये ज्यादा है ये कम है, वो करते रहते हैं। और नतीजा क्या है कि डॉक्टर केमिस्ट की दुकानें दवाइयों से भरी पड़ी हैं, फिर भी लोग हेल्दी नहीं है। और सतयुग में क्या होता है ऐसा, इसका पोटेशियम कम हो गया, इसका कैल्शियम कम हो गया, या लक्ष्मी नारायण सैर करने जाते हैं सुबह सेहत बनाने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, या कोई एक्सरसाइज करते हैं, या कोई किसी प्रकार की कुछ भी करते हैं, नहीं, उनका शरीर नेचुरल ही बैलेंस्ड है तो जरूरत ही नहीं, और पूरी आयु है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इसलिए बैलेंस, तो बैलेंस मीन्स एक ब्राह्मण को अपने आप ही जो हमें ज्ञान मिलता है, जो हमें योग मिलता है, हर चीज हमारे लिए इजी और नेचुरल होनी चाहिए। जितने हम देवता हैं सब नेचुरल हैं, और उनको हर चीज नेचर उसके घर में प्रोवाइड करती है। अब देखो किसी पेड़ पे सेब लगे हुए हैं, अब पेड़ में इतने सेब लगते हैं तो क्या पेड़ प्रॉफिट के लिए सेब लगाता है कि मुझे इसमें लाभ कितना होगा, नहीं। क्या पेड़ में सेब लगाने के लिए पेड़ को मेहनत करनी पड़ती है, नहीं। नेचुरली पेड़ सेब से लदा रहता है, और पेड़ की इच्छा क्या होती है, उसको यही खुशी है मेरे कोई सेब खाए, सारे सेब खा ले और फ्रेश खाए। अच्छा, सतयुग में तो ऐसा ही होता था। जैसे बाबा है, बाबा कहता है मेरी क्या इच्छा है, मैं मेरे बच्चे सारे देवी देवता बन जाएं, इसी में मेरी खुशी है। सेब का पेड़ एक भी सेब खुद नहीं खाता। अब बाबा कहते मुझे आपसे कुछ लेना है कि मैं कुछ नहीं लेता। तो जितने देवता हैं, चाहे वो स्थूल हैं चाहे वो सूक्ष्म हैं, उनके अंदर अपनी कंप्लीटनेस और दूसरे को देने की नेचुरल स्वभाव रहता है। हम कहते हैं सूर्य देवता, अब सूर्य देवता क्या करता है? सूर्य देवता को रोशनी चाहिए, कहते हैं ना सूर्य को चिराग दिखाने की कोशिश करते हैं। सूर्य देवता को गर्मी चाहिए? नहीं, वो इतना कंप्लीट है कि देता ही रहता है, देता ही रहता है। और उसकी जो रचना है, आग मान लो अग्नि हीट है, कभी भी आप अग्नि जलाओगे ऊपर की तरफ जाएगी कि हम सूर्य के पास पहुंच जाए, क्योंकि उसका माई बाप वो है। इसी प्रकार से जल देवता है, अब जल देवता क्या करता है? हर नदी चाहे वो किसी पहाड़ से निकले, उसके रास्ते में कितनी भी रुकावट डाल दो, नदी का क्या लक्ष्य होता है? मैंने जाके सागर से मिलना है। और सागर को क्या पानी की जरूरत है? नहीं, पर वो इतना कंप्लीट है और इतना हम्बल है, यानी नीचा है, कि भाग भाग के पानी उसके पास जाता है। इसी प्रकार से हमने देवी देवता बनना है तो ब्राह्मण जीवन में हमें ऐसा ही कंप्लीट होना होगा जो हमसे लोग ले जाएं। और बाबा कहता है आपको मैंने ऐसा व्यापार दिया हुआ है जिसमें आप जितना मर्जी दान करो आपका घटेगा नहीं, बढ़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यापार नहीं है जो देने से आपका बढ़े। आपके पास 10,000 रुपया है, आपने 5,000 किसी को दे दिया तो आपके पास आधा हुआ, तो कौन देगा? लेकिन बाबा ने हमें ऐसा व्यापार सिखाया है जिसमें आपका घटता तो है ही नहीं। इसीलिए हर ओपनिंग सेरेमनी में दीपक जलाते हैं, दिखाने के लिए कि देखो भाई, एक दीपक से दूसरा जलाया उसका कुछ नहीं घटा, दो हो गए, 10 जला लो, 100 जला लो, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ज्ञान है हमारा पहला व्यापार का धारणा का विषय ज्ञान। अब ज्ञान देने से आपका ज्ञान घटता है या बढ़ता है, क्या ख्याल है? घटता है? नहीं। अच्छा, दूसरा है योग, कि बाबा ओशन है उससे कुछ मर्जी ले लो। आपने किसी को बाबा का याद करने का रास्ता बताया तो आप खुद रास्ता भूल गए क्या? नहीं, दो व्यक्ति उस रास्ते पे चल पड़े कुछ लेने के लिए, हमारे से नहीं उससे। धारणा, अब एक गुलाब का खुशबूदार फूल है, उससे 5 व्यक्ति खुशबू लेते हैं या 100 व्यक्ति खुशबू लेते हैं, उसकी खुशबू घटती है क्या? नहीं। तो इसी प्रकार से आपके पास कोई गुण है, आप प्रेम स्वरूप हैं, दूसरा भी आपको देखकर प्रेम स्वरूप बनता, आपका घटा तो नहीं। तो हमारा बिजनेस ही ऐसा है, सेवा करोगे तो आशीर्वाद मिल जाएगा। इसलिए बाबा ने हमें अलौकिक जीवन सिखाया है, अलौकिक धारणा के तरीके बताए। अब बैलेंस से सिर्फ अपनी कमाई होती है, कोई भी आत्मा बैलेंस में रहेगी तो उसकी अपनी कमाई होगी, उसकी अवस्था अडोल होगी, वो निरंतर प्रसन्न रहेगा, बाहर के प्रभाव में नहीं आएगा। अब मान लो हमारे नोट आज बदल गए तो सारी दुनिया के सभी लोग डिस्टर्ब हैं, मेरे नोट का क्या होगा, मेरे नोट का क्या होगा, उनकी बुद्धि चल रही है और इतने डिस्टर्ब हैं, खाना भी खाना भूल गए। अब बाबा कहता है मेरे बच्चे, उनको भी वो समस्या है, लेकिन बाबा के बच्चे क्या योग लगाना भूल जाते हैं या क्लास में आना भूल जाते हैं या मुरली सुनना भूल जाते हैं या सेवा करना भूल जाते हैं? नहीं। क्यों? ये बाबा ने हमें सिखाया है, अगर मेरे अभी प्राण निकल जाएं, आत्मा अगले एडवांस पार्टी में चली जाए, तो चाहे मेरे नोट असली हैं या नकली हैं या नए हैं या पुराने, मेरे किस काम के? तो जब मुझे पता ही है ये सब चीजें एक साधन हैं और साधन आपके कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं कर्मों के अनुसार। और ये तो बाबा ने बहुत समय पहले हमें कह दिया था कि नहीं, दुनिया को पता हो ना हो कि बच्चे एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा कुछ होगा कि सब लेवल हो जाएगा, जिसके आधार पर रावण खड़ा है, मैं इतना धनवान हूँ, उसको इतना अभिमान है कि किसी व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करता, उल्टे काम करता है। बाबा ने कहा ज्ञान सुन के नहीं मानना तो ऐसे मान जाओ, आप पे ठीक हो जाओगे, है ना। वैसे हमें सहनशीलता सिखाई जाती है, वो नहीं सीखते, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जाती है और नीचे आने में टाइम लगता है तो सहनशीलता धारण करनी पड़ती, क्या करेंगे, मजबूरी से, ये मोहब्बत से। इसलिए बाबा कहता है वरदान मेरे जो है वो मेहनत नहीं मांगते, कोई भी वरदान मेहनत नहीं मांगता, मोहब्बत मांगता है। तो हमारा रास्ता है मोहब्बत का, कभी भी मेहनत करनी पड़े सोचो गड़बड़। तो इसलिए किसी धनवान व्यक्ति के पास ज्यादा धन हो तो क्या करता है, एक तो उसने खुद कमाया, बैलेंस रख के खुशी कमाई, क्योंकि जब आप किसी चीज के फोकस करके करते हैं वो आपको प्राप्त होती है। आपने फैसला कर लिया कि मैंने खुश रहना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई मेरा सब कुछ ले जाए पर मेरी खुशी ना ले जाए, ये गुलजार दादी हमेशा कहती है। अच्छा, अब हम खुश रहने लग गए, पर हमने इतनी खुशी कमा ली जो हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो 21 जन्म चलनी है। तो आप क्या करोगे, कोई बिजनेसमैन के पास करोड़ों रुपया हो जाए और उसके बिजनेस में इतना इन्वेस्ट ना हो, वो क्या करता है, दूसरों को दे देता है कि चलो भाई तुम अपना बिजनेस करो, इन्वेस्ट कुछ मुझे उसका हिस्सा दे देना 5%। तो उसके पास हरेक से 5% ले लेकर बहुत हो जाता है और उसका धन खाली भी नहीं रहता। इसी प्रकार से बाबा ने ये नहीं कहा सिर्फ खुश रहो, खुश रहो इज बैलेंस, हमें ब्लेसिंग भी लेना है, हमारी कमाई क्या होगी, ब्लेसिंग बढ़ेगी। अब दादी जानकी जी में और अन्य आत्माओं में क्या डिफरेंस है कि वो ब्लेसिंग कमा रहे हैं साथ साथ, अपने पर मेहनत नहीं करनी पड़ती, अथाह खुशी है, पर इतनी है कि वो दूसरे को हर वक्त देते रहते हैं। उनकी ब्राह्मणी कहेगी दादी अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं नहीं, नेचुरली उनका इन्वेस्ट होता रहता है। तो बैलेंस प्लस ब्लेसिंग इज इक्वल टू ब्लिस, कि अगर हम खुद को भी बैलेंस में रखें तो आपका नेचुरल लाइफ दूसरे को भी बैलेंस में रखेगी। क्यों, वो कहेगी ये बड़े खुश नजर आते हैं, क्या इनके पास क्या चीज है, ना इनके पास बैंक बैलेंस है, ना इनके पास अपना मकान है, पर ये खुश क्यों रहते हैं, कुछ तो है, इनके पास कोई फॉरेन का धन आ रहा है, तो हमारे पास तो फॉरेन का धन रोज आता है, शिव बाबा दे जाता है, इसलिए उसको हम जब इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ब्लेसिंग मिलेगी, फिर आपका मन नाचता ही रहेगा। क्योंकि जब अंदर खुशी है तो खुशी तो अपने नचाएगी, नाचने का मूल आधार ही खुशी है, और हमारे पास खुशी ही खुशी है। क्यों, इतने जन्म हम सुख में रहे, बाबा ने अन्य आत्माओं को पकड़ करके परम धाम भेज दिया और बाबा ने हमें इकट्ठे कर दिया। बाबा के बच्चे जो सतयुग में सारे वर्ल्ड में ही भारत कहलाता था वहां रहते थे, और रावण कहां रहता था लंका में। वो भारत जो इतना सारे विश्व को भारत कहते थे, आज वो भारत लंका बन गया है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े होके ये पाकिस्तान ये फलाना तो छोटा हो गया है। तो रावण तब आता है जब हम लंका के निवासी हो जाते हैं, दुनिया टुकड़े टुकड़े हो जाती है, और हम लोग कोई कर्नाटक में चला गया, कोई वहां चला गया, कोई विदेश में चला गया, एक बरादरी उसको रावण क्या करता है, टुकड़े टुकड़े करके कहीं कहीं फेंक देता है, और बाबा क्या करता है, उन सबको इकट्ठे कर लेता है। अब कोई ब्राह्मण न्यूजीलैंड से आ रहा है, कोई हांगकांग से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई असम से आ रहा है, इकट्ठे कर देता है। फिर बाबा कहता है यहां से तुम जाओगे फिर अलग अलग हो जाओगे, तो मैं कैसे इकट्ठा करूं। फिर वो सभी आत्माओं को कहता है अरे दुखी हो ये शरीरों को छोड़ो, मैं तुम्हें परम धाम ले चलता हूँ, शांति मिलेगी। सब चले जाते हैं, फिर चुपके से अपने बच्चों को इकट्ठे करके भेज देता है। सतयुग में इकट्ठे है सब, ब्राह्मण देवता बन गए। तो कितनी युक्ति बाबा कर रहे हैं हमारे लिए, वहां तो डांस ही डांस है, कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है मेरे को पकड़ के रखो, मैं आपका सब कुछ ऑटोमेटिकली बैलेंस में कर दूंगा, सेट कर दूंगा, जैसे वो हाथ से तराजू को पकड़ते हैं। तो सार क्या निकला, अगर हमने निरंतर मन का डांस करना है तो हमारी खुशी निरंतर रहनी चाहिए और हमें खुशी बांटते रहना चाहिए, क्योंकि तो अगर खाली हुए तो फिर कुछ रावण को डिस्टर्बेंस कर देगा। रावण की बैड कंपनी से बचना है, क्योंकि तो वो विस्मृति करा देता है। आज भी सारे दिन में अगर कोई ब्राह्मण जरा सी रावण के साथ लेता है तो उसको विस्मृति हो जाएगी कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन मिला हुआ है। इसलिए स्मृति स्वरूप, तो आप स्मृति स्वरूप रहेंगे, अरे हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, इतना हमारा अच्छा पाठ था और अब फिर वो आ रहा है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि संगम का मतलब है सब दुख दूर हो रहे हैं। तो व्यक्ति नाचेगा नहीं तो और क्या करेगा। ओम शांति।